के कौन से मुकाम से और इसका क्या मफहूम है? चलिए ये बताइए कि कुराने पाक का कौन सा मुकाम था? सूरत, आयतें, मफहूम और अहजाब और जी शाहीन, सूरह फतह की आयतें थी जी। सूरत फतह की आयतें हमने अभी सुनी है, क्यों सुनी है अभी देखते हैं इंशाल्लाह। हजरत उस्मान के बारे में थोड़ी सी बात होगी। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तुम्मिम बिल खैर। अशरह मुबशरह, उसमें से हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हो के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से इन लोगों को ज़मीन पर रहते हुए जन्नत की खुशखबरियाँ मिली, लेकिन इससे इनके ना तो अमल में कोई कमी आई, ना इन्होंने ये सोच लिया कि अब हम कुछ भी ना करें, नेकियों की तरफ भागना और अच्छे अच्छे काम करना जब घुट्टी में पड़ जाता है तो बंदा सिर्फ जन्नत के लिए या सवाब के लिए काम नहीं करता, ये उसकी आदत बन जाती है। याद रखिए कि मुसलमान होने के नाते हम जो भी अच्छा काम करते हैं ना, उसमें हमारी दो नीयतें होती हैं और होनी चाहिए। नंबर एक, अल्लाह की रज़ा, और नंबर दो, जन्नत की तलब। रगबन व रहबन, खौफ होना चाहिए कि कहीं हमारी बदनीयती या काम गलत तरीके से करना इसको ज़ाया ना कर दे। लेकिन इसके बावजूद जब इंसान किसी काम को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेता है तो वो सिर्फ़ इन दो चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि मुझे करना ही ये है। 9 दफ़ा हज़रत उस्मान को ग़ज़वे तबूक के मौके पे उस्मान फिल जन्ना के अल्फाज मिले। अल्लाह के नबी ने इनको कई मौके पे कहा कि उस्मान जन्नत में है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की नेकियां क्यों ना कम हुई? क्योंकि ये सिर्फ़ सवाब और हसूले रज़ा के लिए नहीं करते थे बल्कि इनके दिल दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठी हुई थी। अभी तक जितना कुछ हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में पढ़ा है, उससे ये पता चलता है कि वाकई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ताला ने दौलत भी दी थी और दिल भी दिया था। अगर अल्लाह माल दे तो दिल भी उस्मान जैसा दे। और इनकी ज़िंदगी का वो एक वाक्या कि जब कोई नबी सल्लम की तरफ से भेजा हुआ शख्स इनके घर के दरवाजे पे आया कि कुछ मांगे, लेकिन घर में आवाज़ क्या थी कि जब एक चिराग से काम चल सकता है तो फिर दो क्यों चलाए। और ये बात सुनकर उस शख्स की जुरत ना हुई उस्माने गनी के से कुछ मांगने की, पलट गया। लेकिन बाद में दोबारा जब भेजा गया और उन्होंने दोबारा सवाल कर ही दिया तो अशरफियों की थैली दी। ये फ़र्क था। पूछा क्यों, फ़र्क क्या है? कहने लगे कि चिराग का बिल मेरे नाम पे आता, वो मेरा ज़ाती खर्च था, और ये जो तुमने मांगा ये मैं अल्लाह को दे रहा हूँ। असल में ये वो कैफियत थी जिसने अल्लाह जिसकी वजह से इन लोगों को अल्लाह ने चुना, उलाइक अल्लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबुहुम लित्तक्वा। अल्लाह ताला कहते हैं ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए मुंतखब कर लिए, इम्तिहान ले लिए इनके। तो उस्माने गनी की अगर आप पूरी ज़िंदगी को देखें तो अल्लाह ताला के हुक्मों पे थे। हमने उनकी शख्सियत को देख लिया, अब थोड़ा सा हम इनकी ज़िंदगी का देखें कि ताजिर तो थे ही, बिल्कुल शुरू ज़िंदगी से अपने आप को इस चीज़ में रखे हुए थे। और नबी सल्लम से कितने छोटे थे या बड़े थे? कितने छोटे थे? सिर्फ 6 साल छोटे थे। और क्या बने नबी के? दामाद। क्या इतनी बड़ी उम्र का शख्स दामाद बन सकता है? ये चीज़ सीखिए, और एक दफ़ा नहीं, दूसरी बार। आज हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के इस मिजाज को समझ नहीं पाती। तो याद रखिए, शख्सियात बड़ी अहम होती हैं, वो शख्सियात अच्छी हैं। आज थोड़ी सी बात करूँगी हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत की। टोटल 11 बरस, 11 ईयर्स, क्योंकि ये चीज़ें तारीख के पर्दे में अक्सर छुपी हुई हैं। हज़रत उमर की शहादत के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आपके ज़माने में बहुत सी फतूहात हुई, एशिया, कूचक, खरासान, तराबलस, तब्रिस्तान, कुरमान और इसी तरह सिस्तान जैसे कुछ इलाके, इनके दौरे खिलाफत में उम्मते मुस्लिमा को मिले। आपके ज़माने खिलाफत के जो आखिरी साल थे ये साजिशों में गुजर गए। याद रखिए, कुल्लु ज़ी नेमतिन मक़सूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। कुछ लोग आपके मुखालिफ थे, वो नहीं चाहते थे कि जिस फेयर तरीके से आप हुकूमत चला रहे हैं तो वो भी करें। प्लस यहूद की तरफ से एक शख्स था अब्दुल्ला बिन सबा, सबा, इसने कुछ लोगों को आपके खिलाफ किया, आप पे झूठे इल्ज़ाम गढ़े। असल में ये शख्स यहूदी था लेकिन नाम से मुसलमान बना। बिलवाई, कुछ नाम कह लीजिए, बिलवाई, आप उसको सबाई भी कह सकते हैं, एक कबीला था, वहाँ के लोगों को जमा किया, मदीने का मुहासरा किया और हज़रत उस्मान को 35 हिजरिया में शहीद कर दिया गया। जिस वक्त आप शहीद हुए आपकी उम्र मुबारक 82 बरस थी, 82 साल की उम्र पाई। देखा जाए तो लंबी उम्र पाई ना, इससे पहले के खुलफा कितनी उम्र में चले गए? 60s में चले गए। 2 दिन तक आपकी लाश बगैर कफन के पड़ी रही, आपके प्यारे करीब ना आ सके, क्यों कि बागी कहीं हमें ना पकड़े। किसी को इजाज़त नहीं थी कि आपका कफन दफन करें। मदीना में उस वक़्त एक क़यामत बरपा थी और अमली तौर पे कह लीजिए कि बगावत हो चुकी थी और बागियों ने मदीना का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। कुछ लोगों ने रात को हिम्मत की, चुपके से आपकी डेड बॉडी को लेकर आए और फिर उसके बाद जन्नतुल बकी में आपको दफन किया और इनके जनाजे में टोटल 17 लोग शामिल हुए थे। इतना बड़ा खलीफा, और आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह ने उनको, यानी इतने थोड़े लोगों को उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने का मौका दिया, तो ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। आपकी शहादत के क्या असरात हुए थे? इंतहाई गमनाक वाक्या। आज बहुत सारे लोग तकरीबन 39 ईयर्स के बाद के वाक़े, वाक़े करबला के शहदा को एक बहुत ज़्यादा बड़ी शहादत करार देते हैं। शायद उसकी वजह यह कि हज़रत उस्मान की शहादत को वो ज़्यादा जानते नहीं हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो 40 दिन के भूखे थे, यानी उनको उनके घर में बंद किया गया था और इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि ये फ़ौज के साथ हमला कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के दिफा के लिए फ़ौज को बीच में नहीं लाऊंगा, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो कर दो, कसास लिया जाएगा, क़यामत तक एक साथ नमाज ना पढ़ सकोगे ना जिहाद करोगे, यानी शिराज़ाबंदी टूट जाएगी। और हज़रत उस्मान की शहादत उम्मते मुस्लिमा में फितनों का दरवाज़ा खोल गई। वो दिन और आज का दिन उम्मते मुस्लिमा दोबारा नहीं सुलझी। खाना जंगियां हुई, फतूहात का सिलसिला रुक गया, इस्लामी कुव्वत जो थी कमज़ोर हो गई। और मैं ये पढ़ते हुए सोच रही थी कि कितने नरम थे ना, कितने बाहया, कितने खूबसूरत थे, कितने दौलतमंद थे, इसके बावजूद भी लोग उन पर इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूके। लोग कभी भी, याद रखिए, अच्छे से अच्छे काम करने वालों को भी नहीं माफ़ करेंगे। हज़रत उस्मान पे जो एक इल्ज़ाम था वो क्या था कि अपने रिश्तेदारों को बहुत पूछते हैं, अकरबा परवरी का इल्ज़ाम था, हालांकि बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और हज़रत उस्मान ने मस्जिद नबवी की तौसी की। कहत के ज़माने में लोगों में गल्ला मुफ्त बांटते थे, और आप हज़रत अबू बकर और उमर के दौर में मशीर थे, यानी वज़ीर थे। ये कह लीजिए कि पहले भी आपका सियासत में हिस्सा था या हुकूमत में था, और कातिब वही भी थे। बुखारी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की एक रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी इस हाल में दुनिया से रुख्सत हुए कि वो इन यानी हज़रत अली और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो से राज़ी थे। अल्लाह भी राज़ी तो वो भी राज़ी, लेकिन जब बंदे दुश्मन बन जाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा इंसान की सारी की कराई नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। फिर इसी तरह से हज़रत उस्मान को अगर हम इस रंग में देखें कि अल्लाह ने इनसे बहुत बड़े काम लिए, जैसे मैंने पीछे तذکرہ किया कि इनके कारनामों में किताबत वही भी थी, क़ुरान को पाइल अप करना था। ये जो मौजूदा मस्जिद नबवी की तौसी चल रही है आज, ये हज़रत उस्मान के दौर से शुरू हुई थी। उससे पहले जुरत नहीं किसी को हुई कि इवन कच्ची मस्जिद को पक्का भी करें, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर पक्के हों और नबी की मस्जिद कच्ची हो। और आज भी देखिए कि उस जगह जाकर एहसास होता है कि अगर इतनी साफ़ सुथरी और इतनी वसत और सफाई का ख्याल ना हो तो हो सकता है कई नरम मिजाज लोग, नाजुक मिजाज वहाँ आना भी ना पसंद करें। और हज़रत उस्मान में हया थी। अल्लाह के नबी एक मौके पे लेटे हुए थे तो आपकी पिंडली से हल्का सा कपड़ा हटा हुआ था। अबू बकर आए, आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे। जो ही हज़रत उस्मान अंदर आए तो आप उठकर बैठ गए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, फरमाया मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। बाहया थे, मर्दों में हया का तस्करा बहुत कम आता है। कहते हैं कि अगर गुसल करते तो दरवाजे को बंद करके कपड़े उतारने में इस कदर शर्माते थे कि अपनी पुश्त भी सीधी नहीं करते थे। फिर जू नौरैन थे ना, तो जू हिजरतैन भी थे, दो हिजरतें की, हबशा की तरफ भी और मदीना की तरफ भी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि 9 हिजरी में उम्मे कुलसूम फौत होती हैं, पहली बीवी 2 हिजरी में फौत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो हज के मनासिक सबसे ज़्यादा जानते थे, ये भी इनकी एक खूबी है, यानी मनासिक हक, हज, हज के तरीके, रिचुअल सबसे ज़्यादा इनको पते थे और लोग इनसे सीखते थे। और तरतीब में इनका नंबर क्या था मुस्लिम होने में, फोर्थ, चौथा नंबर था, तीन इनसे पहले थे, ये फोर्थ थे। अल्लाह अकबर। हज़रत इनकी खाला थी, उन्होंने सबसे पहले इनको तबलीग की थी, लेकिन जो बाकायदा इनके दिल में इस्लाम दाखिल हुआ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोटिवेशन से था। और इसी तरह से इनका एक और कारनामा भी क्या है, कसरत इबादत, रात भर भर खड़े रहते और रोज़े रखा करते थे। और आप देखिए कि नबी सल्लम की अजवाज के लिए हुजरे जो बने वो हज़रत उस्मान की ज़मीन पे बने थे। इन्होंने जगह ख़रीद कर अपने पैसों से वो जगह ली और वहाँ नबी सल्लम की बीवियों के लिए घर पड़े थे, घर बने थे। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 35,000 दिरहम का कुआं ख़रीद कर आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, वक्फ लिल्लाह। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको आप देखें तो जब तक पूरा दिल ना इस्लाम में घुसा हो इंसान ये नहीं करता। फिर कहते हैं कि इनके चेहरे पे हल्के हल्के चीचक के निशान भी थे, दाढ़ी घनी थी और अपनी दाढ़ी को मेहंदी से रंगा करते थे और चेहरा सफ़ेद था, जो भी है। लेकिन आप देखिए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को किस खूबी पर चुना गया, ये नोट कीजिएगा। ज़ाहिर है कि हज़रत अबू बकर और उमर तो सारी ज़िंदगी ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखते हैं, अब उस्मान गनी को क्यों चुना गया? तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को शहीद करने की कोशिश की गई और आप ज़ख्मी हो गए, 3 दिन की मोहलत थी। अब ज़रा से इस चुनाव को भी समझिए कि आप में खूबी कोई होती है तभी अल्लाह आपको चुनता है। तो हज़रत उमर ने हज़रत मिक़दाद को हुक्म दिया 6 लोगों के नाम देकर, नंबर 1 अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास और अब्दु बिन रहमान, कि इन 6 में से किसी एक को खलीफा मुख्तलिफ मुंतखब करना है, यानी नॉमिनेटेड ये लोग थे। और फरमाया किसी वहाँ ये उस मजलिस में जब तक वो अपने में से किसी एक को खलीफा ना चुन ले, किसी दूसरे को ना जाने देना, यानी इन्हीं में से एक चुने जाएंगे। तो बहरहाल हज़रत इब्ने उमर को राय देने के लिए वहाँ शरीक किया गया, और इस तरह सब की मुत्तफिका राय से हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने। बास लोग आज इस तरह की बातें करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कि नऊज़ बिल्ला, ये खुद ही आगे आ गए, लेकिन इन लोगों को ज़बरदस्ती खलीफा बनाया जाता था। याद रखिए, लीडरशिप आसान काम नहीं है। बड़ा बनना बज़ाहर बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन कंधों पे जो बोझ बड़ों के होता है वो छोटों के नहीं होता। आप अपने और अपने माँ बाप को सोच लें जब आप छोटे थे और वो कई फिक्रों में खोए होते थे। जिस वक्त आप आराम से सो जाते थे थक हार के खा पी के, उस वक्त वो फिक्रों में होते थे। तो हज़रत उस्मान ने ख़ुद खिलाफत नहीं मांगी। इन लोगों की नज़र इसमें नहीं थी कि चलो हम कुछ अपना माल सीधा करें, कुछ शोहरत लें। ये दीन के खिदमतगार बन के, कौन क्या कहते हैं कि सरदार जो होता है वो कौन होता है, असईदू, जो सईद होता है कौम का वो कौन होता है, खादिम, खादिम होता है। तो ये खिदमत के जज्बों से ये सारे काम करते थे, और बहुत सारे लोगों ने राय दी थी कि हम अपने में से सबसे ज़्यादा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस चीज़ पे पेश करता हूँ। यहाँ मैं सोच रही थी कि सारी ज़िंदगी नबी के सामने इन्होंने अपना माल बार बार लुटाया, लेकिन बाद में खिलाफत मिल गई। देखिए, बज़ाहर खलीफा के हाथ में इख्तियार तो होता ही है ना, ये तो अलग बात है ना कि वो अपने इख्तियार को मिसयूज़ नहीं करते थे, यूज़ भी कर सकते थे। तो अल्लाह ने जो इनसे लिया के इनको वापस नहीं दिया, सब कुछ वापस दे दिया। और इसी तरह से हज़रत उस्मान का जब नाम लिया गया तो बैत ली गई थी, और उस बैत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी पेश पेश थे। यानी बाज़ लोग कहते हैं अली ने बनना था और ये पहले बन गए, ये सब बेकार बातें हैं। ऐसी चीज़ों को ना पढ़ना चाहिए ना सुनना चाहिए। जूं ही इनको खलीफा बनाया गया, ये मिंबर पे आए और लोगों को फिर अच्छे काम करने की रग़बत दी, गफलत से डराया, हर मामले में अल्लाह की रज़ा को सामने रखो, और जो भी कह लीजिए आज के दौर में वज़ीर यानी आमिल और हाकिम थे, उनके नाम एक ख़त लिखा और उनको बताया कि हज़रत उमर फ़ौत हो चुके हैं और मुझे अब खलीफा बनाया गया है। जिस तरह हज़रत उमर के दौर में तुम खिलाफत का काम या जो भी तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी दयानत और अमानत के साथ करते थे, अभी भी इसी तरह करते रहो। यानी इन्होंने अपनी कैबिनेट को कह लीजिए कि एक अच्छा मैसेज दिया था। और आपको पता है कि हज़रत उस्मान के दौर में सबसे पहला मुकदमा कौन सा आया था? किसी ने पढ़ा कभी उसके बारे में कुछ? सिर्फ चंद दिन गुजरे थे और अबू लूलू एक खंजर लिए हुए वहाँ आया। अबू लूलू कौन था? मजूसी, जिसने कत्ल किया था। यानी सबसे पहला मुकदमा उसी शख्स की तरफ से आया था। लंबा वाक़या, मैं अभी इस वक्त 1 मिनट रह गया, बल्कि वो भी पूरा हो गया। हिस्ट्री को पढ़ें, यकीन करें आज हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त है नहीं। मैंने एक जुमला कहीं पढ़ा था, डू यू हैव टाइम टू किल? अब इसका ये नहीं होता कि किसी को कत्ल करने का टाइम है कि नहीं, टाइम को किल करने का वक्त है। सच बताइए, इतना कुछ है किताबों में, इतना कुछ है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वक्त दे, फोकस्ड हो जाए, ज़िंदगी से हर वो चीज़ हटाकर अपनी स्पीड बढ़ाएं। जैसे आपने कभी वो रेस गेम खेली है जिसमें रुकावटों को हटाते हैं, क्या बोलते हैं, हर्डल रेस, चीज़ें हटाते जाएं और भागते जाएं। आप दिन ब दिन दीन, दुनिया, कुरान, इस्लाम, आपको कितना कुछ और स्वर मिल रहा है ना, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। इफ़ यू वॉन्ट टू रन, अगर आपको तेज़ चलना है, आपको भागना है, तो अपने आप को हल्के रखें। ज़्यादा वक्त जहन का, दिल का, दिमाग का आपका इन चीज़ों में जाए, और बाकी चीज़ें साइड इश्यूज़ हैं। कुछ भी नहीं ख़त्म होता, सिर्फ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगियां हमारे लिए मिशले राह बन जाएं। किस तरह की ये ज़िंदगियां गुजार के, देखिए ना 1400 साल पहले की शख्सियत, और आज पढ़ रहे हैं और दिल चाह रहा है कि और पढ़ते जाएं। बहुत सारे वाकयात थे इनकी ज़िंदगी के। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह अपने मुताले के लिए बुक्स जो नोट करें उसमें लिखें। मैं आपको एक दो किताबों के नाम भी एंड पे बताऊंगी इस कोर्स के जो आप इंशाल्लाह छुट्टियों में भी पढ़ेंगे और उसके बाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के वाकयात पढ़ के हमें आज के हालात के लिए गाइडलाइन मिलती है। अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हो, अल्लाह हम से भी राज़ी हो जाए, और हमें अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश پرورش کرنے والا بنا دے کہ کل ان سے بھی اسی طرح کے ستارے نکلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک چھوٹی سی بات جو رہ گئی, سیرت تفسیر میں تو بتائی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا جب حصار کیا گیا اور وہ اپنی بیوی نائلہ اس کا نام تھا اس کے ساتھ وہاں بند کر دیے گئے, اور 40 دن کے محاصرے کے بعد جب روز اٹھتے تھے ایک دن پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے, تو بیوی نے کہا میں پوچھتی ہوں دیکھتی ہوں, واپس آئیں کہا کوئی بات نہیں میں روزے سے ہوں. اسی نکاحت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے خواب میں نظر آئے تھے کہ عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ کھولو گے, افطار کرو گے. یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا اور بلوائیوں نے حملہ کیا اور ان پہ خنجر مارا, اور وہی قرآن جو آج بھی ٹرکی میں رکھا ہوا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پہلے پارے کا بالکل آخری رکوع ہے کہ پس ان قریب کفایت کرے گا تجھ کو ان سے اللہ. اس کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے چھیٹے پڑے اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو گئی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ دنیا میں تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے لیکن اس کے بعد اخروی راحت جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے لیے ان ساری باتوں کو پڑھنا آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اگلی لائٹ بند کر دیجیے, ہاں پچھلی ابھی کھلی رکھیں, پیچھے والی تھوڑی کھول دیں ان کو جانے میں آسانی ہو, وہ کھول دیں. جزاک اللہ خیر.